15 दिसंबर रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। नागरिकता कानून में संशोधन के विरोध में दिल्ली के जामिया नगर और ओखला के आसपास के इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी।
वहीं पे खड़ा था मैं, वहाँ पे फिर पुलिस ने क्या किया, वो रोड खाली कराने के लिए पुलिस ने अपना लाठी चार्ज किया। वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी जामिया के, उनको उन्होंने पीटा। इस दौरान क्या हुआ कि फिर दूसरी तरफ से जो स्टूडेंट थे, वो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने भी मतलब पत्थरबाजी की।
नागरिकता कानून के विरोध में असम और पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन।
विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला आज तीसरे दिन रविवार को भी जारी रहा। खासकर बांग्लादेश सीमा से लगा जो मुर्शिदाबाद जिला है, वहाँ आज भी हिंसा हुई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शनों की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। रविवार शाम को जामिया नगर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में आग लगा दी। बसों में लगी आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताने के साथ खत्म हो गया, मगर कार्बन ट्रेडिंग जैसे विषयों पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि ये तय हुआ है कि संपन्न देशों को कार्बन का उत्सर्जन घटाने के लिए अपनी प्रभावी योजनाएं 2020 तक सामने रखनी होंगी। बीबीसी पर्यावरण संवाददाता का कहना है कि अब तक जताई गई प्रतिबद्धताएं जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने के लिए जरूरी कदमों के अनुरूप नहीं हैं। वार्ता में शामिल रहीं इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की केरा शेरवुड ओरिगन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं।
Of your refusal to include human rights.
आप मानवाधिकारों और आदिम जनजातियों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बाजार के तौर तरीकों ने हमारे समुदायों को सीधा नुकसान पहुंचाया है। आप चर्चा करते हैं और फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता। आप बंद दरवाजों के पीछे कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए हमारे अधिकारों का सौदा करते हैं, लेकिन भूलिए मत, आप प्रकृति के साथ मोलभाव नहीं कर सकते। ये थे आदिम जनजातियों के संगठन की प्रतिनिधि के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में 3 हफ्तों के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस ने शहर के शॉपिंग मॉलों में गए सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। काले कपड़े और मास्क पहनकर आए प्रदर्शनकारी फाइट फॉर फ्रीडम जैसे नारे लगा रहे थे। इनमें से कुछ ने चीन के मुख्य भूभाग से संबंध रखने वाली दुकानों को भी निशाना बनाया। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि थल सेना और नौसेना के कैडेट्स की ओर से व्हाइट सुप्रीमेसी से जुड़े इशारे करने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दोनों सेनाओं के बीच हुए एक रग्बी मैच के प्रसारण के दौरान कुछ कैडेट्स हाथ से ओके से मिलता जुलता इशारा करते दिखे। इस इशारे को एक समय व्हाइट पावर मूवमेंट यानी गोरे लोगों का वर्चस्व चाहने वाले लोगों ने अपनाया हुआ था। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 51 लोगों की हत्या करने के अभियुक्त ने भी कोर्ट में ऐसा ही इशारा किया था। ईरान में खाने पीने की चीजों में मिलावट पाए जाने की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता को भड़काया जा सके। पिछले हफ्तों ईरान में केक, बिस्किट और अन्य चीजों में कुछ गोलियां मिली थीं। बताया जा रहा है कि इसके बाद अलग अलग प्रांतों में कई लोग इन चीजों को खाकर बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य मंत्री सईद नमाकी ने कहा कि ये देश के कन्फेक्शनरी उद्योग को ठप करने की साजिश है। चीन के सरकारी प्रसारक ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब आर्सेनल के एक मैच का सीधा प्रसारण न करने का फैसला किया है। यह कदम आर्सेनल के एक खिलाड़ी की ओर से राजनीतिक टिप्पणी किए जाने के बाद उठाया गया है। मेसुत अजिल ने शिनजियांग में चीन की नीतियों की आलोचना की थी। चीन के इस प्रांत में लगभग 10 लाख वीगर मुसलमानों को पुनर्शिक्षण के नाम पर हिरासत में रखा गया है। इराक से खबरें हैं कि इस्लामिक स्टेट समूह के चरमपंथियों ने उत्तरी प्रांत किरकुक में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। चरमपंथियों ने वादी जायतौन इलाके में पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया जिसमें 2 अधिकारियों की मौत हो गई। 2 साल पहले इराक की सेना ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से सभी इलाके छुड़वा लिए थे, मगर चरमपंथी उत्तर और पश्चिम के अंदरूनी इलाकों में छापामार हमले करते रहते हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, संदीप सोनी के साथ। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर और ओखला के आसपास के इलाकों में आज हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। बसों में लगी आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है और जो फुटेज वहां से मिले हैं उसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागती हुई नजर आई है। घटनास्थल पर एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, सुनिए उन्होंने बीबीसी को क्या बताया।
इनका विरोध ये था कि कैब और एनआरसी जो लाया जा रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। मैं वहीं पे खड़ा था। मैं तो हुआ ये कि वहाँ पे फिर पुलिस ने क्या किया, रोड खाली कराने के लिए पुलिस ने अपने लाठी चार्ज किया। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी जामिया के, उनको उन्होंने पीटा। इस दौरान क्या हुआ कि फिर दूसरी तरफ से जो स्टूडेंट थे, वो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने भी मतलब पत्थरबाजी की। तो हुआ ये कि उसके बाद स्टूडेंट ने बसों में वहाँ पे डीटीसी की बसें थी उनके ऊपर पथराव किया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इससे पहले भी ये इन्होंने मतलब मार्च निकालने की कोशिश की थी 13 तारीख को, तो उस वक्त इन्होंने जामिया के पास ही रोक दिया था बैरिकेड लगा के। लेकिन अब जो चूंकि इन्होंने मतलब आज पुलिस ने क्या काम किया कि यहाँ पे बैरिकेड ना लगा के इन्होंने 2-3 दिन से वहाँ पे बैरिकेड लगा रखे आगे कम्युनिटी सेंटर में, तो वहाँ पे बैरिकेड लगाए थे। तो इस दौरान यहाँ से जो प्रदर्शनकारी चले गए थे यहाँ से वहाँ जाते हुए और वहाँ से डाइवर्ट होके उन्होंने रास्ता क्रॉस करके दूसरी साइड से ब्लॉक कर दिया रोड, तो पुलिस ने भी पीछे से आके उनके ऊपर अटैक किया। और इस दो अभी मतलब मान के चलिए कि ये 3-4 हजार छात्र थे, उस साइड से पुलिस वाले भी थे, मतलब पुलिस वालों की संख्या 200-300।
ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द जो घटना के समय जामिया नगर इलाके में मौजूद थे। इस बीच इलाके में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम संपर्क होता है ताज़ा अपडेट लेकर आएंगे आपके पास। दूसरी ओर जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षक संघ ने दावा किया है कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले जो भी थे वो उनके छात्र नहीं थे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ असम में चल रहे प्रदर्शन के 7वें दिन आज गुवाहाटी में एक अलग तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने गीत संगीत के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। असमिया सिनेमा और थिएटर की बड़ी हस्तियों ने विभिन्न गीतों के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त किया। गुवाहाटी समेत राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। गुवाहाटी से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
नए नागरिकता कानून के खिलाफ असम के लोगों का आंदोलन रोज तेज होता जा रहा है। असमिया फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने आज गुवाहाटी के चांदमारी मैदान में अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों ने गीतों और नाटकों के माध्यम से पूरे दिन अपना आंदोलन चलाया। आसू प्रमुख समुजल भट्टाचार्य द्वारा अहिंसक आंदोलन की अपील के बाद यह बड़ा प्रतिरोध था। इसने विरोध की उस अनूठी असमिया परंपरा की गवाही दी जिसकी बदौलत यहां चर्चित असम आंदोलन हुआ था। इस बीच गुवाहाटी में पिछले 12 दिसंबर को हुई पुलिस फायरिंग के दौरान घायल एक और युवक की मौत GMCH में हो गई। उन्हें शहर के डाउनटाउन इलाके में घर वापस जाते वक्त गोली लगी थी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों के अंदर पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 2000 दूसरे लोग हिरासत में लिए गए हैं। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू में ढील दी गई। असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कृष्ण ने बीबीसी को बताया कि इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों की समीक्षा के बाद कर्फ्यू हटाने और इंटरनेट सेवाएं फिर से चालू करने पर निर्णय लिया जा सकता है।
अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी एग्रीमेंट है, अभी रात को डिसाइड होगा कि कल के लिए क्या किया जाएगा। और ये तो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन रहेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। आई कांट से एनीथिंग जस्ट नाउ।
आपको याद दिला दें कि असम में भड़की हिंसा के बाद राजधानी गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहाट में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कारण कई लोग अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं, उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों के लिए वहां की गुरुद्वारा समिति ने खाने का इंतजाम कराया है। पंजाबी बिरादरी के बलबीर सिंह ने बीबीसी को यह जानकारी दी।
लंगर हम लोग कर रहे हैं पिछले तीन दिन से लगातार नॉन स्टॉप लंगर चल रहा है। चाय नाश्ता दिया जाता है, फिर दोपहर का लंगर। कम से कम एक समय में कम से कम 5 से 6 हजार जो पेशेंट और अटेंडेंट है उनका खाना गुरुद्वारा कमेटी को दिया जा रहा है।
इधर ऊपरी असम के सिपाजार उदालगुड़ी हाईवे पर ऑयल इंडिया के टैंकर पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इसमें ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया, उनकी गुवाहाटी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद ऑयल इंडिया के टैंकरों का परिचालन बंद हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फेसबुक लाइव कर लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन सवाल यह कि अगर राज्य के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ही चालू नहीं हैं तब उनके फेसबुक लाइव का कितना असर होगा। दरअसल कैब के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन अब असमिया प्राइड का मामला बन गया है। लोग इसके विरोध में हैं और यह विरोध बड़ा व्यापक है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए गुवाहाटी में।
उधर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में नागरिकता कानून संशोधन के विरोध में आज भी लोग सड़कों पर उतरे। इस घटनाक्रम के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने कोलकाता में मौजूद हमारे सहयोगी पीएम तिवारी से अब से कुछ देर पहले बात की।
विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला आज तीसरे दिन रविवार को भी जारी रहा और कल जिन इलाकों में हिंसा हुई थी, खासकर बांग्लादेश सीमा से लगा जो मुर्शिदाबाद जिला है, वहां आज भी हिंसा हुई, आगजनी हुई, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ हुई और आग लगा दी गई कम से कम 3 रेलवे स्टेशनों पर, और वहां से चलने वाली तमाम ट्रेनें बसें आज भी बंद रही। पूर्वोत्तर और असम और सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाली ट्रेनें भी आज रद्द हो गई और दक्षिण पूर्व की कई ट्रेनें रद्द रही। एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें आज भी रद्द रही और जगह जगह नेशनल हाईवे पे आग लगा दी। तो इसी वजह से आज भी सरकार ने 6 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा सामयिक रूप से स्थगित कर दी है ताकि अफवाहों और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाया जा सके।
ये बताइए कौन से जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है?
हावड़ा और मुर्शिदाबाद है जहां कल सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर मालदा मुर्शिदाबाद तो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। इसके अलावा उत्तर और 24 परगना जिलों के 2-2 सब डिवीजन जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, अल्पसंख्यक बहुल हैं, वहां पाबंदी लगाई गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कहना है और उनका विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर क्या कहना है?
इस मुद्दे पर सियासत काफी तेज हो गई है। कल से ही सियासत शुरू हुई थी, आज और तेज हो गई है। भाजपा ने इसके लिए सीधे ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हैं, उन्होंने आज कहा कि ममता वोट बैंक की राजनीति के तहत जानबूझकर हिंसा करा रही है और यही स्थिति जारी रही पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। और एक राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने भी कहा कि हम राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर हिंसा जारी रही तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा हमारे पास। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस हिंसा और मौजूदा हालात के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है।
आपको लगता है कि ये विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आने वाले दिनों में थमेगा या ये और संकट गहराता जाएगा? किस तरह की योजनाएं बनती दिख रही हैं आपको वहाँ जमीन पर?
मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस भी कल से नागरिकता कानून के विरोध में सड़कों पर उतरेगी। कोलकाता में ममता के नेतृत्व में कल ही एक रैली होगी सोमवार को। दूसरी ओर भाजपा ने भी जवाबी रैलियां करने की योजना बनाई है, तो रैलियों और जवाबी रैलियों के आयोजन से इस मुद्दे पर बंगाल की सियासत और जमाने के आसार नजर आ रहे हैं।
सड़कों पर जो लोग उतर रहे हैं विरोध करने के लिए, वो मूलतः कौन लोग हैं?
मूलतः अल्पसंख्यक हैं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का भी मानना है कि ज्यादातर लोग सीमा पार से आकर और यहाँ बसते रहे हैं और कभी लेफ्ट फ्रंट तो कभी तृणमूल कांग्रेस अपने वोट बैंक के चक्कर में उनको राशन कार्ड और वोटर कार्ड ये सब बनवा के देती रही है। और ये इसलिए ये संयोग नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक लोग ही इस हिंसा में शामिल हैं और ज्यादातर हिंसा उन्हीं इलाकों में हो रही है जो बांग्लादेश के करीब है सके हैं।
जानकारी दे रहे थे कोलकाता से पीएम तिवारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और फिर उसे जला देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी दे रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र की इस घटना के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। मेवालाल नाम के इस व्यक्ति पर अपने पड़ोस की लड़की के साथ रेप करने और फिर उसे जिंदा जलाने के आरोप हैं। गंभीर रूप से झुलसी लड़की को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लड़की के भाई की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर 2 FIR दर्ज की है। फतेहपुर के जिलाधिकारी संजीव सिंह का कहना है कि लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंध थे और इस बारे में शनिवार को एक पंचायत भी हो रही थी।
प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लड़की और उसके आरोपी चाचा के मध्य पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर ग्राम में परिवारजनों के मध्य पंचायत भी की गई और पंचायत में दोनों को अलग अलग रहने की हिदायत दी गई, जिससे शुद्ध होकर आग लगाने की यह दुखद घटना प्रकाश में आई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, जिस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की।
हालांकि पकड़े गए अभियुक्त ने घटना में हाथ होने से साफ इनकार किया है। अभियुक्त ने लड़की के साथ प्रेम संबंध होने की बात भी स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त पीड़ित लड़की का रिश्ते में चाचा लगता है। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में अभियुक्त का कहना था,
लड़की ने पता नहीं अब ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, बाकी जब पंचायत से लड़की हो गई, समझौता हो गया था, हम लोग हमको बाहर भेजने के लिए मतलब गाड़ी यहाँ से आप चले, पंचायत ये है जो हुआ था कि हमको मतलब इसको छोड़ के अपना घर चले जाओ, वो भी मतलब ना ही थी दबाव में बात, और हम तो अपनी तरफ से ठीक था पर दे चले।
लेकिन लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की ने खुद नहीं बल्कि अभियुक्त ने ही आग लगाई। लड़की के भाई का कहना है,
सब लोग भी बहन को अपने डांटा, क्योंकि हम तो उसके बड़े हैं, डांट सकते हैं, तो मैंने भी डांटा, अपने ये भी डांटे, मान गए। वहाँ से हमने भेजा, हमको जाना था काम पे, अपने खा जाओ, अपना खाना बनाओ, हम फटाक दे निकले क्योंकि टाइम बहुत हो गया, अपने चली आई। फिर उसके बाद सब वहीं पे बैठे थे, तो जब इधर आग लग गई, जब बुझ गई, उधर देखा जा रहा, यहाँ पे झांकने नहीं, दरी से उधर ही भाग गया। उसके बाद इनके बाप माता रही है, ये भी नहीं रुके।
कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़की पूरी तरह से जली स्थिति में वहां आई थी। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित लड़की को उच्च स्तरीय इलाज दिया जा रहा है ताकि उसे बचाया जा सके। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आज हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। घटनास्थल से BBC संवाददाता सलमान रावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सलमान साहब, क्या देख रहे हैं इस समय आप?
काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, और यहाँ पर एक तरह का कैओस है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। वहां तक के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और जैसा कि पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है खबरें, पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। गोली चलने की भी खबर है और कई छात्रों के घायल होने की खबर है। बहुत सारे छात्र बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ उस इलाके में खड़े हुए हैं, जहाँ पर चूंकि वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, अपने हॉस्टल्स नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ पे एक कोहराम अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लड़कियां भी हैं जो काफी डरी हुई हैं, और यहाँ पर अभी भी हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं। काफी वक्त लगेगा इसको नॉर्मलाइज होने में, अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है।
सलमान साहब, यदि हालात आपको इजाजत देते हैं इस बात की, तो आप तफसील से बताएं, जब आप घंटे दो घंटे पहले इलाके में पहुंचे, उसके बाद आपने सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या देखा, लोगों से आपकी बात हुई होगी, आपने हालात को भांपा होगा, वो सिलसिलेवार तरीके से हमारे सुनने वालों को यदि हालात इजाजत दें तो बताते जाएं।
जी देखिए, ऐसा है कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो एम्बुलेंसों का वहां से आना शुरू था। यहाँ पे लोग जमा हैं, काफी बड़ी संख्या में जो छात्र भी हैं अंदर के, वो यहाँ पे खड़े हुए थे। पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है, लंबा चौड़ा कंटिंजेंट खड़ा हुआ है, जो कि फिर दोबारा जाएगा। एक दस्ता पुलिस का ऑलरेडी अंदर जा चुका है, और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आगजनी की जो घटनाएं हुई, जिसमें बस के जलने की बात आ रही है, 2 बसें जली हैं, कारें जली हैं, यहाँ के लोगों का कहना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि हमने, हमारे तरफ से ये नहीं हुआ है, जामिया के स्टूडेंट्स ने बसें नहीं जलाई हैं, ये बाहर के तत्वों ने इस तरह के काम को अंजाम दिया, ये इनका आरोप है। हालांकि अभी पुलिस के अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, वो बाहर खड़े हुए हैं काफी दूर, क्योंकि वो अंदर जा नहीं सकते, अंदर क्या हो रहा है वो उन्हें पता नहीं है। एम्बुलेंसों का आना जाना जारी है, उसके बाद बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं, कभी गाड़ियां जा रही हैं, कभी गाड़ियां आ रही हैं, हेलमेट पहनकर राइट गियर में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, एक एक करके टुकड़ी अंदर जा रही है, और उसके बाद वहाँ हो क्या रहा है ये किसी को पता नहीं है। सारे मीडिया वाले एक ही जगह पर यहाँ पे खड़े हुए हैं, होली फैमिली हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा सा आगे हम खड़े हैं, जहाँ पर ये जो घायल हैं उनको पहुँचाया जा रहा है।
दिल्ली के जामिया इलाके से ये थे BBC संवाददाता सलमान रावी। भारतीय फिल्मों के संवेदनशील कलाकारों का जिक्र जब भी होता है, उसमें स्मिता पाटिल का नाम ज़रूर शुमार होता है। उनका फिल्मी सफ़र कहने को तो सिर्फ 10 साल का रहा, लेकिन उनके अभिनय को आज भी सराहा जाता है। 2 दिन पहले यानी 13 दिसंबर को स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि थी। BBC में हमारी सहयोगी रहीं श्वेता सिंह ने कुछ वर्ष पहले स्मिता पाटिल पर एक खास प्रस्तुति तैयार की थी, जिसे हम आज दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं।
डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है।
तो मरने क्यों ले दिया मुझे? क्यों वापस ले आए?
स्मिता पाटिल, याद है ना वो सांवली सी लड़की?
मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो?
तमें चोर हो।
बकवास
बकवास, तमें चोरी की है?
मैंने चोरी नहीं की, मैंने नमूना मांगा, तुमने मना कर दिया।
फिर भी लिया?
हाँ हाँ फिर भी लिया, मगर उसके पैसे भी वही।
पैसा का मैं कुछ नहीं जानू साहब, दूध लिया है नहीं लिया पूरा गांव को यहाँ बुला लूंगी।
जितनी बार पर्दे पर आई कुछ ना कुछ कमाल दिखा कर गयी। छोटी सी उम्र में स्मिता ने ऐसे फिल्मों में काम किया जो कि भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, मंडी, अर्थ, अर्धसत्य जैसी कलात्मक फिल्मों की लंबी कतार में चक्र, शक्ति, निशांत और नमक हलाल जैसी कमर्शियल फिल्में भी शामिल हैं। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस को जब नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आजमी, अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला तो वो उनसे पीछे नहीं रही। खुद को काली कहने वाली स्मिता पाटिल 17 अक्टूबर 1955 में पुणे में पैदा हुई। सांवले रंग की छोटी सी बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख कर इनकी माँ विद्याताई पाटिल ने इनका नाम स्मिता रख दिया। स्मिता के पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी माँ समाज सेविका। स्मिता अपने बचपन में स्कूल के एक नाटक का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन जब प्रिंसिपल ने इन्हें नहीं चुना तो ये निराश हो गईं। लेकिन स्मिता को तो अभी लंबा सफर तय करना था। नाना पाटेकर कहते हैं,
स्मिता में जो और नूतन जी में जो एक कॉमन बात यह है कि उनकी आंखें इतना कुछ बोल देते थे और अच्छे ऐसे आर्टिस्ट आपके साथ होना तो आपकी फिल्म कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और अपनी एक राय रखती थी वो, उसे अगर कोई चीज पसंद नहीं आई, सही नहीं लगी तो वो बेझिझक बोल देती थी, मैं तो ऐसी हूँ, ले लो नहीं तो भूल जाओ।
फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने के लिए उन्हें साड़ी पहनना जरूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना आसान लगता था, तो स्मिता ने एक आसान तरीका निकाला, जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेटना। और ऐसा कहा जाता है कि श्याम बेनेगल ने स्मिता को पहली बार टीवी पर समाचार पढ़ते हुए ही देखा था, तो कैसे स्मिता उनकी फिल्म चरणदास चोर का हिस्सा बन गई? श्याम बेनेगल याद करते हैं,
मेरे एक साउंड रिकॉर्डर से, आई हैड अ साउंड रिकॉर्डर इंद्र घोष एंड ही मेंशन टू मी दैट देयर वाज अ यंग,
मेरे एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे हितेंद्र घोष, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल, वो पुणे से है पर फिलहाल वो बॉम्बे में है क्योंकि उनके फादर महाराष्ट्र कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। मैंने तय किया कि मैं उस लड़की से मिलूंगा। मैं स्मिता से मिला और मैंने तय किया कि मैं इस लड़की का एक ऑडिशन लेना चाहता हूँ। निशांत से पहले मैंने स्मिता पाटिल को बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए चुना, और जब छत्तीसगढ़ में मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू की तब मैंने पाया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट है, और तभी मैंने तय किया कि स्मिता ही फिल्म निशांत में मेरे साथ काम करेगी।
1977 स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई।
हरिलाल की खुशखबरी सुनानी है, ये मेरे होने वाले पति देव हैं।
इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके भी निर्देशक श्याम बेनेगल थे।
स्मिता पाटिल के निभाए गए हर किरदार बहुत दमदार थे, पर मुझे भूमिका में निभाया गया उनका किरदार बहुत पसंद था। मुझे याद है जब हम इस फिल्म की शूटिंग बाहर कर रहे थे तब साउथ अमेरिका के एक जाने माने निर्देशक चाहते थे कि स्मिता पाटिल उनके साथ काम करे, लेकिन स्मिता ने ना कह दिया। कारण मुझे नहीं पता, कैमरे के सामने स्मिता पाटिल की एक्टिंग इतनी सहज होती थी कि शायद ही कोई और एक्ट्रेस हो।
वर्ष 1981 में आई फिल्म चक्र में स्मिता पाटिल ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को पर्दे पर जीवंत बना दिया और इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वो दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गयी।
क्या बैठा है सुबह सुबह, आप फूट जाएंगी तेरी।
80 का दशक आते आते स्मिता पाटिल व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर चुकी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया तो दूसरी तरफ उन्होंने अर्थ अर्ध सत्य मंडी और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया।
मैं जान दे दूंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी।
1987 की मिर्च मसाला ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी।
मिर्च मसाला मेरी तीसरी फिल्म थी और जब मैंने स्क्रिप्ट खत्म की और पता चला कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से वो जो स्क्रिप्ट है वो अप्रूव हो गई है तो मैं लोकेशन देखने गया गुजरात में और उस फिल्म में मिर्च का बहुत ही महत्व का रोल है और मैं गया तो देखा कि जब मिर्च की सीजन थी वो तो शुरू हो चुकी थी और वो 2 महीने में मिर्च की सीजन जो है वो खत्म होने वाली थी तो मैं भाग के मुंबई वापस आया और स्मिता के पास गया क्या कि भाई ये तो सीजन जो है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगी तो उन्होंने किसी भी तरह से जोड़ तोड़ के अपनी डेट्स जो है वो बाकी फिल्मों से निकाली और इस फिल्म के लिए राजी हो गई और तैयार हो गए।
स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया वहीं दूसरी तरफ उन्हें फिल्म एक्टर राज बब्बर से जुड़े संबंध को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। स्मिता पाटिल की जीवनी। स्मिता पाटिल अब ब्रीफ इनकैंडेसेंस लिखने वाली मैथिली राव कहती हैं
कि माँ तो एकदम खिलाफ थी उसके बारे में। वो तो बोलती थी कि मेरी बेटी जाके दूसरी की शादी तोड़ने की जैसा वो नहीं चाहिए और विमेन्स राइट्स के लिए ये तो लड़ती है तो जाके वो कैसी सेकेंड वुमन इन ए मैरिज कैसे बन सकती है। तो उसका माँ का रिश्ता बहुत नाजुक था वो टाइम पर। सो फादर तो इज वेरी ओपन। वो बहुत बहुत उसे दुख लगा क्योंकि उसकी माँ उसकी रोल मॉडल थी।
स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत याद करते हैं कि वो दिन उनके लिए कितना कठिन था।
वो बोला करती थी कि दीपक मैं कभी मर जाऊं तो मेरा तुम सुहागन का मेकअप कर। वो शायद वो अपनी मम्मी को भी बोलती थी घर में भी बोलती थी या जाने अनजाने में भी बोलती होगी। एक दिन उन्होंने राजकुमार जी को देखा। राजकुमार एक पिक्चर में थे तो वो लेट के मेकअप करते थे तो स्मिता जी ने आई मुझे बोली कि नहीं नहीं तुम मेरा लेट के मेकअप करो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं लेट का मेकअप नहीं करूंगा आपका और वो अच्छा नहीं लगता है वो डेड बॉडी को मेकअप करते ऐसा लगता है। बोले नहीं नहीं मैं मरूंगी तो मुझे मेकअप मतलब सुहागन बनाना और दुखद बात है ये दुखद हादसा है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी मेकअप आर्टिस्ट को करना पड़ा होगा लेकिन ये पहला वक्त था मेरे लिए। उनको सुहागन बनाया सुहागन के कपड़े पहनाए सुहागन की बिंदिया टिके बिके सब लगा के और बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऐसे करके उनको विदा किया था और उनका अंतिम संस्कार ऐसे
करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी।
स्मिता पाटिल पर श्वेता सिंह की इस प्रस्तुति के बाद खेल समाचार। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस समय चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में पहला एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। आदेश कुमार गुप्त इस मुकाबले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।
जी संदीप, अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य है लेकिन फिलहाल 26वां ओवर चल रहा है। वेस्ट इंडीज का स्कोर है 1 विकेट खोकर 141 रन। शाई होप 44 और शिमरन हटमार 82 रन बनाकर खेल रहे हैं और इन दिनों के बीच 136 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी है दूसरे विकेट के लिए। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि भारतीय गेंदबाज कितना संघर्ष कर रहे हैं जोड़ी को तोड़ने के लिए। इससे पहले श्रेयस अय्यर के 70 और ऋषभ पंत के 71 रनों की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर 8 विकेट खोकर 287 रन बनाए थे। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये बता रहा है कि अगर ये दोनों बल्लेबाज विकेट पर टिके रहे तो फिर वेस्ट इंडीज़ की राह आसान हो सकती है लेकिन अगर जैसे ये जोड़ी टूटेगी तो फिर काफ़ी दिक्कतें आएंगी।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते मुख्य समाचार पुनः आदर्श राठौड़ से।
बीबीसी समाचार। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शनों की आज दिल्ली पहुंच गई है। रविवार शाम को जामिया नगर में प्रदर्शनकारियों ने 3 बसों में आग लगा दी। मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताने के साथ खत्म हो गया मगर कार्बन ट्रेडिंग जैसे विषयों पर फैसला नहीं हो सका। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।